ஓம் ஓம் ஓம். ஆதிகுரு பகவான் சங்கராச்சாரிய விரச்சித் சிவபக்தி சே ஒத்த புரோத ஸ்தோத்ர சிவானந்த லஹரி के आधार पर सायंकालीन संत प्रवचन माला की ये 10 दिवसीय श्रृंखला का आज तीसरा दिन है। अभ्यास के लिए श्लोक नंबर 51।
ब्रिंगिच्छा नटनोत्कटः करिमद ग्राही स्फुरन् माधवा लादो नादयुतो महासित वपुः பஞ்சேஷுணா சாத்ரிதஹ சத்பக்ஷா சுமனோபனேஷு சபுனஹ சாக்ஷான் மதீயே மனோ ராஜீவே ப்ரமராதிபோ விஹரதாம். ஸ்ரீசைலவாசி பிரபு காருண்யாமிருதவர்ஷிணம் கனவிபத் க்ரிஸ்மச்சிதாகர்மடம் வித்யாசஸ்ய பலோதயாய சுமனஹ சம்சேவ்யமிச்சாக்ருதிம் நிருத்யத் பக்தமயூரமத்ரிநிலயம் சஞ்சஜடாமண்டலம் சம்போ வாஞ்சதி நீலகந்தர சதா त्वं मे मनश्चातकः आकाशे नशिकी समस्त पाणिनां नेत्रा कपालीनता नुग्राही प्रणवोपदेशनिनदहि கே கீர்த்தி யோகீயதே ஸ்யாமாம் சைலசமுத்பவாம் கணருச்சிம் த்ருஷ்ட்வா நடந்தம் முதா வேதாந்தோபவனே விஹார ரசிகம் தம் நீலகண்டம் பஜே சந்தியா கர்ம தினாத்யயோ ஹரிகரா காத பிரபூதானக த்வானோ வாரித கர்ஜிதம் திவிசதாம் திருஷ்டிச்சடா சஞ்சலா பக்தானாம் பரிதோஷ பாஷ்ப விததிர் பிருஷ்டிர் மயூரி சிவா யஸ்மின் உஜ்ஜ்வல தாண்டலம் தாண்டவம் விஜயதே తం నీలకంఠం భజే ఆద్యాయామిత తేజసే శృతిపదైర్ వేద్యాయ సాధ్యాయతే నిత్యానందమయాత్మనే త్రిజగతః సంరక్షణోద్యోగినే ధ్యేయాయాఖిల యోగిభిః సురగణైర్ గేయాయ మాయావినే సమ్యక్తాండవ సంభ్రమాయ జటినే సేయం నతి సంభవే భృంగిచ్ఛా నటనోత్కట కరిమదౌ గ్రాహీ స్ఫురన్ మాధవా హ్లాదో నాదయుతో మహసిత వపుః పంచేషుణా చాద్రితః సత్పక్ష్యా సుమనోపనేషు సపునః సాక్షాన్మదీయే మనో రాజీవే భ్రమరాధిపో విహరతాం శ్రీశైలవాసీ ప్రభో శివానంద లహరి కా ప్రసంగ హై ఆదిగురు భగవాన్ శంకరాచార్య జీ భగవాన్ శివ కో కై ఉపమా సే ఉపమిత కర్తే హుయే ఉన్కి మహిమా కా గాన్ కర్తే హై యహాం ఇస్ శ్లోక్ కే ద్వారా భగవాన్ శంకరాచార్య భగవాన్ శివ కో एक भ्रमर के रूप में उपमित किया है। भ्रमर होता है, पुष्पों में विचरण करता है और पुष्प के रस को लेता है। भ्रमर के माध्यम से भगवान शिव को सुना रहे हैं। आप लोग भागवत प्रेमी हो, भागवत सुनते हो कई बार। जब उद्धव पहुंचे ब्रज में कृष्ण के संदेश को लेकर और ब्रजवालाएं भगवान श्री कृष्ण के वियोग में व्यथित थी, जमुना के किनारे बैठकर कृष्ण वियोग जन्य संताप से वह विलाप कर रही थी। उसी समय उद्धव वहां पहुंचे। उन ब्रजवालाओं ने उद्धव को देखा कि नहीं देखा भगवान जाने। कहते हैं उन ब्रजवालाओं के बीच में एक भ्रमर पहुंच गया, उड़ता हुआ भ्रमर पहुंच गया ब्रजवालाओं ने देखा उस भ्रमर को। और उस भ्रमर को सब बात सुनाई। उद्धव भी वहीं खड़े थे। सुनाया तो भ्रमर को, कहा तो भ्रमर को, प्रत्यक्ष कहा है भ्रमर को और सुनाया है उद्धव को। सारी बात उद्धव सुनते रहे। ब्रह्मर से उन लोगों ने जो बात कही है उद्धव बड़े प्रेम से सुनते रहे और लक्ष्य करके उद्धव को ही कहा था, प्रत्यक्ष ब्रह्मर को कहा है, परोक्ष रूप में उद्धव को कहा है। इसी तरह भक्ति सिद्धांत में ऐसा होता है, आदिगुरु शंकराचार्य जी यहां प्रत्यक्ष ब्रह्मर को संकेत कर रहे हैं और कह रहे हैं शिव जी को, मानो शिव जी ही ब्रह्मर बनकर वहां घूम रहे हों और उन्हीं को शंकराचार्य से सुना रहे हैं। यह अन्योक्ति अलंकार है, इसमें अन्य को कहकर अन्य को सुनाना यह अन्योक्ति अलंकार। शब्द पर ध्यान दो, भृंगिच्छा नटनोत्कट करी मद ग्राही स्फुरन माधवा। भ्रमर और भ्रमरी होता है ना, मिस्टर को भ्रमर और मिसेज को क्या बोलोगे, भ्रमरी और भ्रमरी को यहां भृंगी कहा गया है। भ्रमर को भृंग कहते हैं तो भ्रमरी को भृंगी, ये शब्द प्रयोग किया शंकराचार्य जी ने, यह भृंगी भ्रमरी के लिए है। जिस समय भ्रमर अपनी भ्रमरी को देखता है, भृंगी को देखता है, प्रेम का भाव जग जाता है, स्वाभाविक ही है। प्रेमी जिस समय अपने प्रेयसी को देखता है तो उसके हृदय में एक प्रेम का भाव जग जाता है, प्रकट होता है। देखने की बात छोड़ दो, स्मरण करता है तो भी प्रेम का भाव जग जाता है। इसीलिए भक्त के हृदय में भगवान को स्मरण करता है तो हृदय में भक्ति का भाव जग जाता है। तो भ्रमी को, भृंगी को यानी भ्रमरी को प्रसन्न करने के लिए भृंग भ्रमर नाचने लगता है, अपने हृदय के भावों को अंग प्रत्यंग के माध्यम से भ्रमरी के सामने, भृंगी के सामने प्रकट करता है। वह प्रकट करना ही भ्रमर का भृंगी को रिझाने के लिए नाचना है। भृंगी के सामने भ्रमर नाचता है कि नहीं ये तो आप लोग नहीं जानते हो, क्योंकि आप बगीचा में नहीं रहते हो, फूल आपके चारों तरफ नहीं है। जहां फूल के बगीचा हो वहां जाओ तब ये दृश्य देखने को मिलेगा। लेकिन ऐसे भी सामान्य हमारे घरों में कबूतर तो रहते ही है ना, कबूतर और कबूतरी का जोड़ा है दुनिया में, वो प्रेम के प्रतीक हैं, यही मानते हैं सब लोग। जब कबूतर अपने कबूतरी नजदीक आती है तो उसके सामने वह कई बार गीत गाता हुआ नाचता रहता है, चारों तरफ घूमता है और गीत गाता है, गुटुर गु शुरू करता है, है? ये कहानी तो आप लोगों ने प्रत्यक्ष देखा है, प्रतिदिन घर में आपके सामने नाचने लग जाता है कबूतर। उसके मन में यह संकोच नहीं होता है कि कोई देखेगा तो क्या कहेंगे। इसी तरह भृंगा यानी भ्रमर, भृंगिच्छा नटनोत्कटः, भृंगी के इच्छा के अनुसार नाचने में यानी नृत्य करने में स्वतः प्रवृत्त होने वाले भ्रमर। भ्रमर क्यों नाचता है? तो भृंग की इच्छा अनुसार नाचता है, उसको खुश करने के लिए नाचता है। इसलिए यह भ्रमर को कहा भृंगेच्छा नरनोत्कटः। भ्रमर का दूसरा विशेषण है करिमदग्राही। करी माने हाथी, करी माने हाथी, करी है नहीं, फिर कड़ी बोलोगे, फिर कड़ी न बोल देना, री है, हड़ी नहीं है, करी मदा, करी माने हाथी। गर्मी के समय में हाथी जो होता है उसके मस्तक से मद निकलता है, और जिस समय उसके हाथी के मस्तक से मद निकलता है तो हाथी के सिर में बहुत मडराता है, क्योंकि उस मद को वह ग्राही है, मदक ग्राही है, यानी हाथी के सिर में से निकलने वाले उस मद को वह ग्रहण करता है, यानी उसके रसपान करने के लिए हाथी के सिर के पास चारों तरफ मडराता रहता है। कौन? भ्रमर। करिमदग्राही ही, यह दूसरा विशेषण हो गया किसका? भ्रमर का। पहला विशेषण हो गया भृंगीच्छा नटनोत्कट। उत्कट माने उत्तम, भृंगी की इच्छा अनुसार नाचने में नाच दिखाते हैं, उत्तम नृत्य करने वाले होने के कारण भ्रमर को नटनोत्कट, भृंगीच्छा नटनोत्कट ये कहा। करिमदग्राही, जंगल में बहुत से बहुत फूल खिले हुए हों तो भी यदि कोई मदमत्त हाथी वहां घूम रहा हो, भ्रमर को पता चल जाता है, तो सारे फूलों का मकरंद को छोड़कर वह हाथी के मद के लिए वह लालायित होता है, कूद पड़ता है, और हाथी परेशान होता है उसके लिए। स्फुरन माधवाल्लाद, माधव शब्द का अर्थ होता है बसंत ऋतु। माधव शब्द का अर्थ वसंत ऋतु है। स्फुरन माधवा, अब ये निश्चित है, उद्दीपक है ये बसंत ऋतु, उद्दीपक है, प्रेम का उद्दीपक है ये। और हाथी के सिर में से जो मद निकलता है वो भी बसंत ऋतु आने पर ही निकलता है, और क्योंकि बसंत ऋतु आने पर अनेक प्रकार के फूलों में भी फूल भी खिल जाते हैं, और फूलों में भी मकरंद, अनेक प्रकार के मकरंद तैयार होते हैं, और इसीलिए उसी समय में प्रेमी और प्रेयसी के हृदय में प्रेम का भाव उद्दीप्त होता है। इसलिए वसंत ऋतु श्रृंगार रस प्रदान के लिए है। भ्रमर भी यहां उसको यही श्रृंगार रस के प्रतीक के रूप में प्रस्तुत करते हैं। स्फुरन माधवाल्लादः, बसंत ऋतु आने पर जो प्रसन्न होवे, नादयुतो भ्रमर, मौन तो उड़ेगा नहीं, भ्रमर जब भी उड़ेगा नादयुतः, गुंजायमान करता हुआ ही उड़ेगा वो, चाहे जिसके पास जाना हो, चाहे हाथी के पास जाना हो, चाहे भृंगी के पास जाना हो, चाहे फूल के पास जाना हो, जब भी उड़ेगा वह नादयुत। गूं करता हुआ उड़ता है। वो महाशित वपुहु, ये भ्रमर का ही विशेषण है। ये भी शित माने सफेद, संधि ये करना है। अशित जो सफेद नहीं है, तो भ्रमर तो सफेद होगा नहीं। भ्रमर कहीं सफेद होगा? भ्रमर तो काला होगा या नीला पना लिया हुआ होगा, लेकिन सफेद नहीं होगा। इसलिए अशित बपू, जिसका शरीर सफेद नहीं है, है? महाअशित काला है। और क्या, गोपियों ने, ब्रजबालाओं ने कृष्ण को भ्रमर की उपमा दी है, क्योंकि कृष्ण भी काला है और भ्रमर भी काला है। और कहा है कि हे भ्रमर, तेरा स्वभाव और उस काले के स्वभाव में कोई फर्क नहीं है, तो जा। वो भी एक गोपिनी को छोड़ता है दूसरे गोपिनी को, दूसरे को छोड़ता है तीसरा, तीसरा छोड़ चौथा, तू भी वही करता है। एक फूल को चूसता है फिर दूसरे में जाता है, दूसरे को चूसता है तीसरे में जाता है, है? उस कलुए में और तेरे में कोई फर्क नहीं है। इसी तरह यहां पर भी शंकराचार्य जी ने कहा, वो भ्रमर असित बपु, काला है तू। पंचे सुना चादृत, स्वाभाविक ही है। जब बसंत ऋतु आता है तो पांच तीर लेकर घूमने वाला वो धड़ाक से घूमता रहता है। पंचेशु, ईशु माने तीर, पंच ईशु पंचबाण है। कौन है पांच बाण को एक साथ चलाने वाला? और वो कब आता है? तो बसंत ऋतु आता है तब है। पंचे सुना चाद्रिता, कामदेव ने तुमको, तुम्हारा खूब आदर किया है। हा, तुम कामदेव का सहयोगी हो। पंचेशु माने कामदेव, जिसके हाथ में पांच ईशु हैं, बाण हैं, वो पंचेशु। अब उसने उसको मान सम्मान देकर रखा है, क्योंकि वह कामदेव के लिए मदद करता है। प्रेमी और प्रेमिका के हृदय में वह उद्दीप्त करता है, प्रेम भाव को उद्दीप्त करता है, और वह कामदेव के लिए मदद करता है, सहयोगी है। इसलिए हे भ्रमर, तुम पंचे सुना आदृत हो, और ने तुम्हारा आदर किया हो न किया हो, कामदेव ने तो तुम्हारा खूब मान सम्मान किया है। हाँ, ये जो कथा के समय में मोबाइल फोन करने की जो समस्या है, इससे हम श्रोता लोग अपनी आदत को सुधारना चाहिए। कथा के समय में तो हमारे चिमन भाई कहते हैं, भाई कृपा करके अपने कीमती टेलीफोन का स्विच ऑफ करके रखो, बोलते हैं। शायद माताजी का फोन कीमती नहीं होगा, इसलिए नहीं किया होगा, ऑर्डिनरी होगा। अच्छा, बंद कर, कैसे बंद करना है वो मालूम नहीं है नहीं? अच्छा अच्छा, तो अब प्रेमपुरी में एक क्लास, प्रेमपुरी में अनेक वर्ग चलते हैं। प्रेमपुरी आश्रम में अनेक वर्ग चलते हैं, तो वृद्धों को मोबाइल का स्विच कैसे अप करना है, कैसे ऑन करना है। ये प्रशिक्षण का वर्ग भी है, अतिरिक्त क्लास मुझे लगता है चलाना पड़ेगा। तो सावधानी तो ही रखना चाहिए भाई। सत्पक्ष सुमनो बने सुसपुना, सत्पक्ष उसके पक्ष माने पंख, भ्रमर के पंख है सत्पक्ष, क्योंकि वो होगा उसके पक्ष होंगे पंख होंगे तभी वह उड़ पाएगा। हो और उड़ता विशेष करके कहां है, घूमता कहां है, फूलों का जो जंगल है। सुमनो बनेसु, सुमना बनेसु, फूल के जो जंगल है जहां खूब फूल खिल रहे हो, झाड़ी हो, सुमना बनेसु, ऐसा जो भ्रमर यहां तक और तीसरे लाइन चौथे लाइन का भ्रमराधिप, भ्रमराधिप माने सभी भ्रमरों में श्रेष्ठ भ्रमर, राजा भ्रमराधिप, यहां तक तो अन्योक्ति है भ्रमर के विशेषण ये सब। अब इसके माध्यम से भगवान शिव को कहा जा रहा है। भ्रमर भी अपने भृंगी को देखकर नाचता है, नाचने में कुशल है भ्रमर। अब आप लोग पुराण की कथा सुन रहे हो कि नहीं सुन रहे हो, ये प्रसंग मालूम है कि नहीं, अनेक ऋषियां हुए हैं हमारे वैदिक सनातन धर्म में, ऋषियों की कमी नहीं है हमारे यहां। इसलिए हम लोग कहते हैं कि भारत भूमि ऋषियों की भूमि है, वैदिक सनातन धर्म में ऋषियों का बहुत योगदान है। अलग अलग समय में ऋषियों ने तपस्या की, कठोर से कठोर तपस्या की और अपनी साधना के द्वारा परमात्मा को प्रकट किया है, परमात्मा के अवतार को व्यक्त किया है और उनकी कामना पूर्ण करने के लिए भगवान को, परमात्मा को अनेक रूप धारण करते धरती में आना पड़ा है। तो परमात्मा को प्रत्यक्ष रूप में अवतार लेने में प्रेरणा करने वाले भारत भूमि की विशेषता है, ऋषियों की बहुत बड़ा योगदान है। हर अवतार में कोई न कोई ऋषि, कोई न कोई साधक की भूमिका रही है। इसी तरह एक ऋषि की चर्चा आती है पुराण में, ऋषि का नाम ही भृंगी ऋषि है। जैसे श्रृंगी ऋषि हुए उसी तरह भृंगी ऋषि भी हुए। और भगवान शिव के अनेक दूतों में से दो दूत एकदम महत्वपूर्ण हैं, जैसे भगवान श्री कृष्ण के विष्णु के दो पार्षद महत्वपूर्ण हैं, जय और विजय। वह स्वर्ग वैकुंठ में भगवान श्री कृष्ण की सेवा के लिए वह पार्षद के रूप में दोनों रहते हैं, वैकुंठ में ही रहते हैं वो, जय और विजय। इसी तरह भगवान शिव के भी दो पार्षद पेटेंट हैं, प्राइवेट सेक्रेटरी, क्या कैलाश में वो हमेशा शिव जा रहते हैं वहीं साथ साथ चलते हैं। उन जो गणों का नाम है श्रृंगी और भृंगी, इसलिए मारवाड़ी लोगों की आरती है एक है, श्रृंगी भृंगी निरत करत है, ये आरती है मारवाड़ी आरती। हम लोगों के आश्रम में दिल्ली में बीकानेरी आरती बोलते हैं हम उसको, भगवान शिव की आरती है, जिसके सामने श्रृंगी और भृंगी हमेशा नृत्य करते हैं। ये तो भगवान शिव के गण का नाम है भृंगी, दूसरा एक ऋषि का नाम है भृंगी, भृंगी ऋषि। एक समय की बात है कि भृंगी ऋषि को भगवान शिव की नृत्य देखने की इच्छा हुई और उन्होंने तपस्या की, शिव प्रकट हो और अपना नृत्य हमको दिखावे, उनकी इच्छा हो गई तो तपस्या की। भगवान शिव प्रसन्न हुए, कहा क्यों ऋषि, क्यों तपस्या कर रहे हो, क्या इच्छा है तुम्हारी, अभिलाषा क्या है? तो भृंगी ऋषि ने कहा आपके नृत्य देखने की इच्छा है, आप हमारे सामने नृत्य करो। भगवान श्री कृष्ण भी तो छाछ के लिए नाचते रहे ना ब्रज में, नहीं नाचे? हाँ, कवि ने कविता ही लिख दिया है, देख लो, एक मुट्ठी छछिया छाछ पर वो नाच दिखाते थे, गए जाकर कहा कि हमको छाछ पिला दो, बोले ऐसे छाछ नहीं मिलेगा कृष्ण, हाँ तुम जरा नाच के दिखाओ तो हम छाछ पिला देंगे। तो अच्छा भाई तुम नाचने की बात करते हो तो हम नाच भी देंगे और क्या। इसीलिए कृष्ण को नटवर वपु कहते, कृष्ण को क्या बोलते हैं, नटवर वपु हो, करणयो हो करणिकारम, बिभ्रत वासा कनक कशिक कपिशम वैजयंतीम चमालाम, रंध्राण बेरो रद्र सुदया पूरयन गोप वृंदे ही वृंदारण्य सुभद रमणम प्राविशत गीत कीर्ति। इसी प्रकार के भगवान शिव को नटराज कहते। अब भगवान शिव ने कृष्ण से नाचना सीखा कि कृष्ण ने भगवान शिव से नाचना सीखा है, किससे नाचना सीखा है, कौन किसके गुरु है, ये तो अनुसंधान ही करना पड़ेगा भाई, क्योंकि जहां शिव भक्ति का प्रसंग आएगा तो हम शिव भक्त होंगे तो हम तो यही व्याख्या करेंगे कृष्ण ने भी शिव से ही नाचना सीखा है, समझ गए ना? तो आप वैष्णव लोग तो आपको नाराज हो, आपको बुरा लगेगा, तो इसलिए हम कह देते हैं भाई शिव ने कृष्ण से ही नाचना सीखा, अब तो खुश हो गए, कोई फर्क नहीं पड़ता है, है? कृष्ण से सीखा शिव ने कि शिव से सीखा कृष्ण ने, कोई फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन शिव की जो लीला है वही कृष्ण की लीला है, कृष्ण की जो लीला है वही शिव की लीला है, कृष्ण और शिव दो अलग अलग होते तब ये प्रश्न होता कि किसने किससे सीखा है। कृष्ण उपाधि में जो तत्व है वही शिव उपाधि में विद्यमान है, और शिव उपाधि में जो तत्व है वही कृष्ण उपाधि में विद्यमान है। खाली भेद तो उपाधि का लेकर है, तो उसके अंदर जो तत्व है वो तो एक ही चीज है ना। हम वेदांती तो यहां तक कहते हैं स्त्री शरीर उपाधि में जो तत्व है वही पुरुष शरीर उपाधि में है, शरीर पुरुष शरीर उपाधि में जो चेतना है आत्मा है वह स्त्री शरीर उपाधि में है, चेतना में स्त्री और पुरुष का भिन्नता नहीं, स्त्री पुरुष की भिन्नता तो स्थूल शरीर के स्तर पर है, यदि यह भिन्नता है तो अन्नमय कोष की भिन्नता से भिन्नता है, लेकिन अन्नमय कोष में होने वाली भिन्नता से प्राणमय कोष में, मनोमय कोष में, विज्ञानमय कोष और आनंदमय कोष में कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है, बाकी चार कोष तो सेम है, बराबर है। इसीलिए कृष्ण से शिव ने सीखा कि शिव से कृष्ण ने सीखा, ये सब अनादि है, ये दोनों ही जगत गुरु है। ये दोनों ही अनु जगत गुरु है तो क्या फर्क पड़ा? कोई फर्क नहीं पड़ता। कोई वैष्णव ये कहता है कि शिव ने भी कृष्ण से नाचना सीखा है तो हमको प्रसन्नता ही होती है, हमारे मन में खिन्नता नहीं होती है। और कोई शैव ये कहता हो कि कृष्ण ने शिव से नाचना सीखा है तब भी हमको प्रसन्नता ही होती है, हमारे मन में कोई खिन्नता नहीं होती है, क्योंकि हम सांप्रदायिक नहीं है, क्योंकि हम किसी एक संप्रदाय के एजेंट नहीं है, हम तो तत्व चिंतन करने वाले व्यक्ति हैं, उपाधि को लेकर झगड़ा करने वाले व्यक्ति हम नहीं है, आकार और प्रकार को लेकर, विशेषणों को लेकर, उपाधि को लेकर चिंता कर झगड़ा करने वाले, विवाद करने वाले हम नहीं है। मुझे बड़ा आश्चर्य लगा, एक बहुत पहले की बात है, प्रेम कुटीर में हम पहले इसी तरह जाया करते थे, मई महीना प्रेम कुटीर होता था मेरा, जून यहां होता था है? और हम और अभी तो ब्रह्मलीन हो गए स्वामी विशुद्धानंद जी, हम दोनों का आगे पीछे चलता था। फरवरी में चेंबूर होते थे, नहीं मार्च अप्रैल, अप्रैल में चेंबूर, मई में प्रेम कुटीर, जून में प्रेमपुरी, हमारा ऐसा चलता था। और विशुद्धानंद जी का यहां मार्च में होता था और इसी तरह हम मई में वहां होते थे, और इस तरह वो आगे आगे चलते थे, हम पीछे पीछे चलते थे। फरवरी में हम अहमदाबाद जाते थे चेंबूर, तो अप्रैल में प्रेम कुटीर जाते थे वो, और हम इस तरह जाते थे, तो मई महीना हम प्रेम कुटीर में करते थे एक महीना। एक समय की बात है, हम कथा करके बैठे थे, दिन में आराम करते थे, तो आप लोग जानते हो, पुराने सत्संगी लोग जानते हैं, हमारे मेवा वाले थे ना, है क्या नाम उनका, ना ना मेवा वाले, उनको मेवा वाले नाम भूल गया मैं, बड़े सज्जन, शिवो हम करते थे बड़े जोर से, शिवो हम करते हुए घर से निकलेंगे, शिवो हम करते हुए निकलेंगे, और सत्संग से निकलेंगे, शिवो हम करते, हॉल में आएंगे, शिवो हम, पतले थे। तो हमारे पास बैठे थे वो, तो कुछ इस्कॉन वाले संत भी हमारे पास आए थे, तो वो लोग भी बैठे थे। तो जब वह आए, दयाराम, अब याद आ गया ना, बूढ़े हो तो बूढ़े तो हो गए लगता है, अब स्मृति में आया, दयाराम मेवा वाले, दयाराम काका बोलते थे वो। तो जैसे वो कमरे में आए तो जोर जोर से शिवो हम करते हुए आए, तो वो कुर्सी में बैठे थे जो इस्कॉन के साधु, वो तो हरे कृष्ण हरे राम कहने वाले हैं वो हरे राम हरे कृष्ण नहीं कहते, हरे कृष्ण हरे राम है वो थे। जब उन्होंने जोर जोर से शिवोम शुरू किया तो दोनों साधुओं ने भी हरे कृष्ण हरे राम कहने लग गए, मैं हंसता रहा, वो शिवोम क्या जा रहा है, वो हरे कृष्ण हरे राम जोर जोर से कहना शुरू कर दिया। ये दोनों का जो नाटक हम देखते रहे वहां, हमने कहा ये देखो, दयाराम तो बेचारा अपने आदत से मजबूर है, वो बोलते रहते हैं बेचारा, बोलते थे। तो हुआ क्या, जब उन्होंने दयाराम ने मुझे प्रणाम किया, फिर उसके बाद उनके पांव छूने लग गए, तो छूने नहीं दिया, खड़े हो गए, बोले महाराज आप साधु हैं क्यों, हमको तो आपके चरण का स्पर्श करना है। बोले नहीं नहीं आप शिव हैं हम जीव हैं। वो व्यंग किया, हम समझते हैं उच्च, उन्होंने उपहास किया व्यंग किया, आप तो शिव हैं हम जीव हैं, शिव कैसे हमारे जीव का चरण छुए भाई। हमने कहा देख लो ये सब खत्म हो गया भाई, छूने नहीं दिया, और छूना नहीं दिया हमारा नियम है, हम क्यों छूना देते हैं, हम वैष्णव हैं या हमारा नियम है व्रत है अपने चरण दूसरों को छूने नहीं देते, कह देते खत्म हो जाता, ये कहने की क्या जरूरत थी, आप तो शिव है साक्षात, हम तो जीव है, शिव जीव का चरण कैसे छुए। दयाराम काका ने कहा कि हम भी जीव ही हैं। बोले आपने अभी अभी कहा तो शिव ले जी, हमने कहा ये विवाद शुरू हो गया भाई, तो थोड़े से वो ऐसे कहते रहे, हम उठ गए और बाथरूम में चले गए, तो उसके बाद फिर वो लोग भी चले गए, वो बैठे जोर जोर से शिव ओम करने लग गए, वो कैसे सुनेंगे वो लोग, तो उसके सामने हरे कृष्ण हरे राम कहते हुए चले गए। ये सब सांप्रदायिक, ये दुराग्रह नहीं करनी चाहिए, हम समन्वयवादी है भाई। तो भृंग ऋषि की इच्छा से भगवान शिव नाचे थे, ये पुराणों में इसकी चर्चा है। शंकराचार्य ने उसका स्मरण किया, भृंगी भृंगी इच्छा नटनोत्कट, हाँ करी मदग्राही, ये शिवजी के विशेषण, अब ये फिर शिवजी पर लागू होता है। भ्रमर भी करी मदग्राही है और शिव भी करी मदग्राही है। पुराण में प्रसंग आता है, भगवान शिव ने गजासुर को ही मारकर उसके खाल को उतार कर पहन लिया था, इसीलिए भगवान शिव का नाम है दंती त्वकृत सुंदरांबर धरे। ध्यान श्लोक में आता है दंती त्वक, दंती माने हाथी दांत वाला, दंती त्वक माने चमड़ी, कृत सुंदरांबर धरे, जिन्होंने हाथी की चमड़ी को उतारा और अपने बहुत सुंदर वस्त्र के रूप में धारण कर लिया, ये हो गए शिवा। ये हो गया क्या, करी मद, करी माने गजासुर, उसका जो मद है, मद माने घमंड, करी मदग्राही, उस गजासुर के घमंड को भगवान शिव ने देखते देखते एक सेकंड में ही त्रिशूल से उस मद को ग्रहण कर लिया, यानी उतार दिया और चमड़ी को उतार कर पहन दी। दंती त्वकृत सुंदराम वर धरे त्रैलोक के सारे हरे, मोक्षार्थम कुरुचित्त वृत्ति मचलम अन्यस्तु किम कर्म भी। स्फुरन माधवाल्लादो, एक समय की बात है, ये शिव और विष्णु का भी लीला बहुत विचित्र चलता है। वो एक समय भगवान शिव ने कहा विष्णु से, समुद्र मंथन के बाद जो अमृत प्रकट हुआ था, उस अमृत के लिए देवता और असुरों के बीच में सेना झपटी चली, तो भगवान विष्णु ने मोहिनी अवतार धारण करके असुरों को मोहित किया और अमृत का कलश असुरों के हाथ से छीन ली, मोहित किया सम्मोहित किया और कलश को हाथ में लेकर देवताओं को सारा अमृत पान करा दिया। ये बात भगवान शिव ने कहीं सुन ली, विष्णु ने ये काम किया है, चमत्कार किया है, तो जब भगवान शिव और विष्णु का मुलाकात हुई आमने सामने, तो भगवान शिव ने कहा कि भगवान अपने असुरों के हाथ में गए हुए अमृत को छीन कर देवताओं को पिलाया, बड़ा अच्छा काम किया, लेकिन ये सब किया कैसे महाराज आपने? तो भगवान ने कहा कि सब करना पड़ता है भैया, सब करना पड़ता है। मोहिनी रूप धारण करके हमने वो काम किया, मोहिनी रूप धारण करके। हां, सारे असुर लोग मोहित तो हो गए उस रूप को धारण किया तो हमने, देखते ही वो तो पागल हो गए असुर, तो वो तो अमृत को तो भूल गए। सभी लोग मेरे रूप को देखकर हा आसक्त तो हो गए, वाह क्या रूप है। ये समुद्र मंथन से निकला हुआ अमृत का घड़ा, ये तो साक्षात अमृत का घड़ा है। देखो क्या सुंदर अमृत का घड़ा खड़ा है यहां। हाँ, सब लोग मोहित तो हो गए। तब हमने कह दिया ये कलश हमको दे दो, हम बांटेंगे। असुरों ने कहा कि हां चलो तुम बांटना, लेकिन ईमानदारी से बांटना। बोले हाँ हाँ ईमानदारी से बांटेंगे, बेईमानी नहीं करेंगे, हमको बेईमानी करना ही नहीं आता है। भगवान को बेईमानी करना आता है? बेईमानी तो जीवात्मा करता है कि परमात्मा? और जीवात्मा को बेईमानी करना सिखाया किसने? बिंब बेईमानी करेगा तभी ना प्रतिबिंब बेईमानी करता है। बिंब प्रतिबिंब का सिद्धांत क्या है? बिंब बेईमानी करेगा तो प्रतिबिंब स्वतः बेईमानी करेगा। तो भगवान ने कहा कि नहीं नहीं हम ईमानदारी से तुमको पिलाएंगे, बैठो लाइन लगाकर। पटापट लाइन लगाए, एक तरफ देवता लोग बैठो, एक दूसरी तरफ असुर लोग बैठो बैठे। तो पहले हमारे तरफ बांटना? बोले हां पहले तुम्हारे तरफ ही आकर बांटेंगे। असुरों की तरफ गए तो पहला जो असुर बैठा था अमृत का कलश लेकर वहां गई मोहिनी, हैं भगवान विष्णु गए तो असुर तो दारू पीकर आया था और आगे बुरा नहीं मानना तो कह दूं, दारू पीकर आया था, लहसुन खाकर आया था, प्याज खा के आया था। दारू के साथ लहसुन प्याज का पकौड़े भी तो खाया होगा ना, तो दुर्गंध आ रहा था उसके शरीर से। है बुरा नहीं मानना हो आप लोग, तो दुर्गंध आ रहा था। मोहिनी ने कहा कि ये क्या हो दुर्गंध आ रहा है, तुम क्या दारू पीकर आए हो? बोले हां। तुम क्या लहसुन प्याज खा के आए हो? बोले हां। तो ये अमृत जैसे चीज को खाने के लिए पीने के लिए तो पहले नहा के आओ, शुद्ध होकर आओ, तभी ये खाने को मिले। सुबह नहाए कि नहीं? और दारू पीने वाला क्या नहाएगा? पंचामृत खाने वाला वो नहाएगा? नहाने की चिंता, दारू पीने वाला नहाने की चिंता करेगा कि पंचामृत खाने वाला नहाने की चिंता करेगा? क्योंकि उसको पंचामृत पान करना है, बिना नहाए पंचामृत कैसे खाएगा, पूजा कैसे करेगा? पूजा ही नहीं करेगा पंचामृत बनेगा कैसे? इसलिए वो पहले नहाएगा। वो दारू पीने के लिए क्या नहाने की है? बोले नहाया नहीं है, जब तक नहीं नहाओगे अमृत पान नहीं करने को नहीं मिलेगा, जाओ। सब लोगों ने बोले हां हमारे हमारी जाति ये असुर लोग, तुमने नहाया नहीं, तुमने नहा लिया नहीं, तुमने नहा लिया नहीं, जाओ पहले तो ब्रश करो, दातुन करो, फिर नहाओ अच्छी तरह, मुख से भी ये दुर्गंध जाए, शरीर से भी ये दुर्गंध जाए, फिर शुद्ध वस्त्र पहनकर धारण करके आओ, तब फिर अमृत पान करना। ठीक है भाई, लेकिन जब तक हम नहीं आगे बांटना नहीं। हां बोले नहीं बांटेंगे, तुम आओ, तुम मुझे विश्वास नहीं करोगे? बोले हां हम विश्वास करते हैं भाई। जैसे असुर गए नहाने के लिए, भगवान ने शुरू कर दिया बांटने, इधर बांटने शुरू कर दिया। एक ने देख लिया कि ये तो बांटना शुरू कर दिया, गड़बड़ हो गया। वो तो नदी में पहुंचकर नहाकर कपड़ा बदलने से पहले ही रास्ते में से कपड़े बदल ली और आकर सूर्य और चंद्र के बीच में आए, देवता जैसे ही बनकर बैठ गया। तो आप लोगों ने भंडारा में देखा होगा, साधुओं के भंडारा में दाल राम दाल राम दाल राम दौड़ते हैं ना बाल्टी लेकर, सब्जी राम सब्जी राम सब्जी राम दौड़ते हैं, है पूरी राम पानी राम जल राम जल राम, बांटना शुरू करते दौड़ते 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 है। अब कुंभ मेले में तो एक ही पंक्ति में पांच पांच हजारों को एक ही साथ खिलाना पड़ता है साधुओं में है। अब तो दौड़ेंगे नहीं तो कैसे होगा वो। तो इसी तरह भगवान जो है मोहिनी अमृत राम करते ही देवताओं के थाल में अमृत बांट के दौड़ रही थी, तो वो बीच में सूर्य और चंद्रमा के बीच में बैठा हुआ था, उसके थाल में भी उन्होंने डाल दिया, बिचारे नहीं किया, उन्होंने सोचा सभी देवता बसे बैठे हैं। जैसे उसके थाल में वो अमृत गिरा कि उसने तो पीना शुरू कर दिया। वो ब्रह्मार्पण मंत्र भी नहीं बोला, अन्नपूर्णे सदा पूर्णे शंकर प्राण वल्लभे ज्ञान वैराग्य सिद्ध्यर्थम भिक्षाम देहि च पार्वतम। आपको वैराग्य क्यों नहीं होता है? आप लोगों की समस्या है कि नहीं महाराज, वैराग्य नहीं होती, वैराग्य नहीं आता। क्यों नहीं आता वैराग्य? खाते समय में प्रार्थना करके खाओ, अन्नपूर्णा से प्रार्थना करो, ज्ञान वैराग्य सिद्ध्यर्थम भिक्षाम देहि च पार्वती। हे पार्वती मुझे भिक्षा दे दो, किसके लिए? ज्ञान और वैराग्य की अभिवृद्धि के लिए मुझे भिक्षा दे दो। अब ये प्रार्थना करके खाओगे तब ना ज्ञान वैराग्य की अभिवृद्धि होगी। तो आप लोग तो थाल में एक पकौड़ा आया वो ही पहले खा लिया, फिर उसके बाद दाल आई तो उसको चम्मच से खाना शुरू कर ही दिया, पाट दाल कटोरी में आई कि खाना शुरू कर दिया। अरे भाई सब कुछ जो पका हुआ है उस पूरा कटोर सामने आवे, उसके बाद हाथ में जल लेकर पानी के घुमाओ, ब्रह्मार्पणम ब्रह्मावि ब्रह्माग्नौ ब्रह्मणाहुतम ब्रह्मैव तेन गंतव्यम ब्रह्म कर्म समाधिना। हाँ इस तरह पंच प्राणाहुति यज्ञ करो, प्राणाय स्वाहा अपानाय स्वाहा समानाय स्वाहा व्यानाय स्वाहा उदानाय स्वाहा पंच प्राणेभ्य स्वाहा। मंत्र पढ़ो, पंच प्राणाहुति यज्ञ करो, तब जाकर वो अन्न शुद्ध होगा, तब उस शुद्ध अन्न से चित्त शुद्ध होगा, तब जाकर ज्ञान वैराग्य की अभिवृद्धि होगी। तो हम लोग तो वो करते नहीं क्योंकि कहीं ना कहीं असुर भाव अंदर है। असुर शब्द का अर्थ ही शंकराचार्य जी ने किया है, असुसु इंद्रियेषु प्राणेषु इंद्रियेषु रमन्ति इति असुरा। इंद्रियों को तृप्त करने के लिए जो भोजन करे उसका नाम असुर। प्राण की रक्षा के लिए भोजन कर रहे हो कि इंद्रिय की तृप्ति के लिए भोजन कर रहे हो, बोलो है? प्राण की रक्षा के लिए भोजन किया जा रहा है कि जिह्वा की स्वाद तृप्ति के लिए भोजन किया जा रहा है? लो जी, क्योंकि हम लोग तो स्वादिष्ट भोजन चाहिए, जिह्वा को जो अच्छा लगे वो। कुछ साल पहले कुछ गुजराती माताएं काठमांडू गई थी, पोखरा नेपाल गए थे, तो आश्रम में अब रोज रोज, क्योंकि हम लोग तो दाल में गुण को कम डालते नहीं है, तो हम लोग तो डालते नहीं है, भारतीय उत्तर भारतीय दाल, तो रोज रोज वही दाल सादा दाल खा के कंटाल गए। तो एक माताजी बोलती है आज दाल मैं बनाऊंगी। कैसे महाराज? बोले आज गुण कोकम डालकर बनाएंगे। हमने कहा कोकम तो मिलेगा नहीं यहां, बोले नींबू तो मिलेगा, हाँ गुड़ बोले चीनी डालेंगे नींबू डालेंगे, हो गया काम। अरे भाई प्राण रक्षा के लिए जो खाना आया खाओ ब्रह्मार्पण करके है, तो वह जो है जो बीच में बैठे था सूर्य और चंद्रमा के, उसको तो ब्रह्मार्पण करना था नहीं, वो तो झट उठा लिया और पीना शुरू कर ही लिया। सूर्य ने देखा ये क्या बात है, ब्रह्मार्पण ब्रह्म अभी किए बिना खा रहा है, ये कहां से आ गया ये नमूना, हा देखा तो ये तो असुर, भगवान को इशारा किया ये आ गया, ये तो पान कर लिया उसे, नमः पार्वती पते हुई नहीं कि गाना शुरू कर दिया। हमारे आश्रमों में तो अनुशासन है, खाने से पहले सब कुछ बंट जाए तब फिर नमः पार्वती पते हो तब शुरू करो, और खा लेने के बाद फिर सबने खा लिया तब फिर नमः पार्वती पते हो तब फिर उठो, एक साथ शुरू करो एक साथ उठो, ये अनुशासन है आश्रम की। तो देवता तो अनुशासित थे कि मोहिनी सब बांटेगी, बांटने के बाद फिर नमः पार्वती पते हर बोलेगी तब शुरू करेंगे, अब उसको तो वो पता ही नहीं था क्योंकि असुरों के संप्रदाय में तो वो था नहीं, वो तो आया पीने शुरू कर दिया। तुरंत भगवान ने सुदर्शन चक्र चलाया, लेकिन तब तक गर्दन से नीचे उतरी गया था, मरा नहीं। तो देवताओं ने कहा कि तू अमृत पान कर लिया है, अब तू हमारे जाति का हो गया, तो अब जाना नहीं असुरों में, तुम्हें हम भाग दे देंगे, देवता सारा तुम्हारी पूजा होगी। तो वही उनकी पूजा शुरू हो गई, देवताओं में उनकी गणना हो गई, राहु केतु भी है। तो अभिप्राय यह है कि विष्णु और शिव जी के बीच में यह सब होता रहता है। तो भगवान शिव ने कहा कि अच्छा ऐसे मोहनी रूप दिखाकर तुमने अमृत बांटा, बोले हां तो मुझे भी दिखा दो, मोहिनी रूप मुझे भी दिखाओ। बोले महाराज ये आप जैसों के लिए रूप दर्शनीय नहीं है, है? बोले नहीं नहीं हमको तो देखना है, चलो देख लो भाई। तो भगवान शिव के आग्रह पर भगवान विष्णु ने दोबारे मोहिनी रूप दिखाया, और ऐसा मोहिनी रूप दिखाया कि शिव पागल हो गए, ये तो आप लोगों ने सुना है ना, पागल हो गए अब क्या करें। तो मोहिनी भागी, शिव भी भागे पीछे पीछे, भागे भागे दोनों भाग रहे, परिणाम क्या हुआ, एक बेटा पैदा हो गया है, सच्ची बात कह रहा हूं गप नहीं कर रहा हूं, एक बेटा पैदा हुआ, उस बेटे का नाम है अय्यप्पा स्वामी। अय्यप्पा स्वामी दक्षिण भारत में अय्यप्पा स्वामी है ना, हाँ अय्यप्पा स्वामी काले कपड़े पहनते हैं उनके दर्शन करने, केरला प्रदेश के वो पहाड़ के चोटी में मंदिर है सबरीमाला, अय्यप्पा स्वामी का बहुत मानते हैं अय्यप्पा स्वामी को, वेद में अय्यप्पा स्वामी की चर्चा है, वो जैसे गणेश की चर्चा है वैसे ही अय्यप्पा स्वामी की चर्चा है, वैदिक देवता है ये अय्यप्पा, पौराणिक नहीं है, हालांकि उनकी जन्म की बात तो पुराण के इस प्रसंग से हुई है लेकिन है वैदिक। वेद में अय्यप्पा शब्द नहीं है, अय्यप्पा तो साउथ इंडियन उन्होंने शब्द प्रयोग किया, वेद में शास्ता देवता के नाम पर ग्राम देवता के नाम पर उनकी चर्चा है, हम जो ग्राम देवता बोलते हैं ना, स्थान देवताभ्यो नमः, वास्तु देवताभ्यो नमः, ग्राम देवताभ्यो नमः, वही शास्ता देवता ग्राम देवता, उनको हरिहर पुत्र बोलते हैं। हाँ अय्यप्पा स्वामी स्वामी शरणम अय्यप्पा, अय्यप्पा स्वामी शरणम हरिहर पुत्र शरणम, वो लोग बोलते हैं, यही नारा लगाते रहते हैं, हरि और हर विष्णु और शिव द्वारा जन्म पैदा हुए हुए हरिहर पुत्र। कई बार ऐसा हुआ कि शिव जी की इच्छा अनुसार विष्णु जी और विष्णु की इच्छा के अनुसार शिव जी, इसी तरह एक बार भगवान शिव ने जब नृत्य किया था तो भगवान विष्णु को भी नृत्य देखने की इच्छा हुई। महाराज मैं तो नाचने जानता नहीं, कृष्ण था तो नाचा था, विष्णु हो गया तो नाचा नहीं, नाचना जानता नहीं हूं। विष्णु नाचे हैं ये कहीं सुनने में आया है? हाँ, तो आपने तांडव नृत्य किया है तो मुझे भी दिखा दीजिए। तो बहुत आग्रह किया तो भगवान शिव विष्णु के सामने भी नाचे हैं। माधवाल लादव, ये माधव माने विष्णु, उनके आह्लादा उनके प्रसन्नता के लिए जो नाचते रहे वो उसका नाम हो गया स्फुरन माधवाल लादो। नादयुतः, जैसे भ्रमर बसंत ऋतु आने पर नाचता है, वैसे भगवान शिव विष्णु के आग्रह पर, शिव विष्णु के आग्रह पर नृत्य करते थे। नादयुतो, जैसे भ्रमर गुंजायमान करता हुआ चलता है उसी तरह भगवान शिव सतत प्रणव का उच्चारण करते हुए विचरण करते हैं। नादव है, समझे नहीं, उसी को अनाहद बोलते हैं। अनाहद षड़ चक्रों में से एक चक्र है अनाहद। मूलाधार, स्वाधिष्ठान, मणिपुर, अनाहत। मूलाधार में गणेश, समझे कि नहीं, स्वाधिष्ठान में ब्रह्मा, मणिपुर में विष्णु, अनाहत में शिव। इस षट चक्र के चिंतन करते समय अनाहत चक्र में शिव जी का निवास है। विशुद्ध में जीव, विशुद्ध चक्र में जीव का निवास है, अनाहत चक्र में शिव का निवास है, और आज्ञा चक्र में गुरु का निवास है। आज्ञा चक्र ये, यहां गुरु का निवास है, और सहस्रार में परम शिव का निवास है, जिसको वेदांत शुद्ध चैतन्य ब्रह्म कहता है। निरुपाधिक सच्चिदानंद अद्वितीय ब्रह्म चिन्मय चैतन्य स्वरूप ब्रह्म का निवास सहस्रार में है। और चक्रों में सभी सोपाधिक हैं, निरुपाधिक सहस्रार में है। वहां सभी का बात करते जाओ, चक्र का भेदन के साथ साथ उपाधि युक्त देवताओं का बात करते जाओ। षड्चक्र चिंतन करते समय में पहले तो एक एक चक्र में एक एक देवताओं का चिंतन करो, और अजपा गायत्री के द्वारा जपे गए मंत्रों का उन देवताओं की पूजा समर्पण करो। उसके बाद फिर एक एक चक्र का एक एक चक्र में बात करो, नीचे के चक्र को ऊपर के चक्र में बात करो, और चक्र के बात करते करते चक्र अधिष्ठान देवता का बात करो। करते हुए आज्ञा चक्र में पहुंचो तो वहां जीव का भी, विशुद्ध से जीव का बात करके आज्ञा चक्र में पहुंचो, और बाद में गुरु का भी बात करो, आज्ञा चक्र का भी बात करके तुम सहस्रार में जाकर उस ब्रह्म के साथ, परम शिव के साथ सायुज्यता का अनुभव करो। ये समाधि का अभ्यास करो, षड्चक्र का ये योग की प्रक्रिया है, ये अजवा गायत्री की ये प्रक्रिया है। ये संत लोग इसके अभ्यास करते हैं। तो भगवान शिव अनाहत चक्र में रहते हैं, और सतत प्रणव का जो नाद है उसको शिव ही उच्चारण करते रहते हैं। नादयुतो महाशित वपुः, दो संधि करके ये शब्द बना है, महाशित वपु, असित नहीं, शीत। भ्रमर के लिए संधि अलग किया था, महा असित, असित माने काला, शीत माने सफेद, असित माने काला। अब यहां महा शीत, कर्पूर गौरम करुणावतारम, बपुहु, जिसका रजत गिरी निभम चारु चंद्रावतंसम, चांदी का जो पहाड़ का जैसा जिसका शरीर है, पहाड़ ही जिनका शरीर है, चांदी का पहाड़, बर्फ का पहाड़, कैलाश पर्वत ही भगवान शिव का शरीर है। इसलिए महा शीत बपु, बड़ा पर्वत वही सफेद पर्वत कैलाश, तो क्या हुआ महा शीत बपु। लाधो नाद युतो महाशित बपु पंचे सुना चादृत, कामदेव शिव को ही भगवान मानता है और किसी को भगवान मानता ही नहीं ना। एक ही कामदेव जो शिव जी को वह परमात्मा मानता है, सर्वशक्तिमान मानता है, है शिव महिमन स्त्रोत्र में पुष्पदंताचार्य जी ने यह बात स्पष्ट कर दी है। कामदेव को यह घमंड था कि मेरे सामने सब कुछ नहीं है, तुच्छ है, सबको मैंने पागल बनाया है, सबको मैंने घायल किया है, सब पर मैंने विजय प्राप्त की है। तो वो शिव क्या होता है, तो घमंड करता हुआ गया था शिव के सामने, भगवान शिव ने उसको देखते ही भस्मीभूत कर दिया। तब कामदेव जब भस्मीभूत हुआ तो सब देवता आकर प्रार्थना करने लगे, महाराज इसका जिंदा रहना बहुत जरूरी है, क्योंकि सारे प्राणियों को प्रवृत्ति का यही एक कारण है। और वेद ने दो धर्म प्रतिपादन किया, एक प्रवृत्ति और दूसरा निवृत्ति मूलक, और यदि आपने इसका नाश कर दिया है और ये यदि जीवन प्राप्त नहीं किया तो सभी निवृत्ति में लग जाएंगे, प्रवृत्ति में कोई लगेगा ही नहीं। सर्वम कामस्य चेष्टितम, संसार में जितने भी प्राणी हैं सभी की चेष्टा कामना से ही होती है, और कामना खत्म हो गया तो प्राणी की चेष्टा ही खत्म हो जाएगी, सब निवृत्ति में लग जाएंगे, तो संसार कैसे चलेगा महाराज, इसके लिए इसको जीवन तो देना ही पड़ेगा। तो भगवान शिव ने कहा कि ठीक है, तुम लोग की इच्छा है, मैं इसको जीवन देता हूं, परंतु शर्त रखते हुए जीवन देता हूं। अब इसके बाद, आज के बाद इसका शरीर तो राख हो चुका है, इसलिए अब शरीर इसको मिलेगा नहीं, ये रहेगा तो अनंग ही, अंग से युक्त शरीर से युक्त नहीं होगा, अनंग रहेगा। इसलिए कामदेव का एक नाम है अनंग। दूसरी बात, शर्त यह है, ये किसी की इच्छा के विपरीत उद्दंडता न करे। जो व्यक्ति इसका स्मरण करेगा उसी के पास ही ये पहुंचे, और जो इसको स्मरण नहीं करते हैं उनके सामने ये न जाए। ये शर्त मंजूर है तो मैं इसको जीवन दान देता हूं, बोले मंजूर है। तब से उसका नाम हुआ स्मरा, स्मरा। आज भी हम लोगों के पास वो आता है, कब हम उसको स्मरण करते हैं तब आता है, उसका स्मरण नहीं करेंगे तो नहीं आएगा, हमको क्यों परेशान करेगा वो, हम स्मरण करते इसलिए हमारे सामने उद्दंडता पूर्वक आता है, कहता तुमने क्यों बुलाया हमको, बस हैरान शुरू करता है वो। उसका स्मरण न करो, शिव का स्मरण करो, तो देखो मजाल है कि वो सामने आकर खड़ा हो जाए। जिस समय शिव का स्मरण करोगे तो मजाल है कि वो सामने आ जाए। तब से कामदेव ने कहा कि मैं शिव के सामने हार गया, और सबके सामने सबको मैंने जीता है, शिव को नहीं जीत पाया, इसलिए पंचे सुना आदृता कामदेव द्वारा सम्मान को प्राप्त हुए, नहीं तो कामदेव और किसी को सम्मान नहीं करता है, हाँ सबको उसने लछाड़ पछाड़ दिया है, हाँ चाहे बूढ़े हो चाहे बच्चे हो, चाहे मनुष्य हो चाहे पशु हो, चाहे कीट हो चाहे देवता हो, चाहे गंधर्व चाहे किन्नर्व, सबको उसने अच्छा पछाड़ दिया है, और वही बच पाया है जो शिव के आश्रय में रह रहा है। क्योंकि उसके हृदय में जब शिव का स्मरण होता है तो कामदेव डरता है, इसके हृदय में शिव का स्मरण चल रहा है तो वहां मेरी कुछ नहीं चलेगी, नहीं जाता है वो। पंचे सुना चाधृत सत्पक्ष, सत्पक्ष माने सज्जनों के सत्पुरुषों के पक्षपाती हैं। परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृताम्, सत्पक्ष सत्संगियों का पक्षपाती हैं वो, है जो ब्रह्म चिंतन करते हैं, सत का आश्रय में रहते हैं। सत माने ब्रह्म, ब्रह्म के आश्रय में रहने वाले, ब्रह्म के चिंतन करने वाले, ब्रह्म में निष्ठा रखने वाले, ब्रह्म निष्ठा ऐसे पुरुषों के वह पक्ष में रहते हैं, पक्षपाती हैं। सत्पक्ष भ्रमर फूल के बगीचे में घूमता है तो शिव भी कम नहीं है। कहां घूमते हैं? सुमनो बनेसु, संस्कार से युक्त हुए हुए मनों में भगवान शिव विचरण करते रहते हैं, इसलिए शुद्ध मन में प्रत्यक्ष विचरण करने वाले। इसलिए भगवान शिव का दर्शन करना हो तो जहां सुमन है वहीं दर्शन मिलेगा, भ्रमर को दर्शन करना हो तो सुमन जहां है वहां भ्रमर का दर्शन होगा। शिव का दर्शन कहां होगा? सुमन में ही शिव का दर्शन होगा, कुत्सित मन में शिव का दर्शन नहीं होगा। भृंगिच्चा नटनोत्कट करिमदग्राही स्फुरन माधवाल लादो नादयुतो महासित बपु पंचे सुणा चाद्रित सत्पक्ष सुमनो बने सुसपुना साक्षान मदीये मनो। हे शिवा, आप सुमन रूपी वन में विचरण करते हो तो मैंने भी एक बगीचा तैयार किया है, मेरे पास भी सुमन है। मदीये मनो राजीवे, राजीव का अर्थ होता है कमल, मेरे मन रूपी कमल में आप आकर बैठ जाओ। भ्रमर को फूलों में से सबसे ज्यादा प्रिय फूल होता है कमल, हाँ सबसे ज्यादा प्रिय कमल का फूल है। इसलिए किसी कवि ने बड़ा सुंदर ढंग से उसका वर्णन किया है। एक भ्रमर था, घूमता हुआ एक सरोवर के किनारे गया, वहां बढ़िया सुंदर कमल खिला हुआ था, उस कमल की जो पराग है उसकी वासना आ रही थी, वह जाके कमल में जाकर बैठ गया तो इतना आनंद आ गया, इतना आनंद आ गया कि वह कमल के नियम को भूल गया, कमल के नियम को भूल गया। कमल का नियम क्या है? सूर्यास्त होते ही बंद होता है, हाँ तो सूर्यास्त होते ही बंद होता है कमल, है तब बंद हो गया तो अरे मैं तो फंस गया, तब जाकर उसको फिर नियम याद आ गया। एक कोई बात नहीं, बंद हो गया तो क्या हार जाए, यहां क्या कठिनाई है, है? फूल में रहना है, कोमल है, अपने आप ही स्पर्श सुख भी हो रहा है उसको, है कोमल देख फूल, कमल का फूल देखने में सुंदर है, उसको नयन सुख भी मिल रहा है, रूप सौंदर्य भी वही है, स्पर्श सौंदर्य भी वहीं पर है, और कमल में से जो पराग है वह वहीं पर है जहां बैठा है, इसलिए गंध सुगंध भी वहीं पर है। क्या भटकना है, बैठो रात भर आनंद से यहीं। और इसका नियम है कल जो है सूर्य उदय होगा तो खिल जाएगा, जाना होगा कल चले जाएंगे, आज क्या फर्क, आज यहीं रहो। ये सोच ही रहा था वह, ये नियम को सोच ही रहा था, तब तक रात के समय में एक मदमत्त हाथी पानी पीने के लिए आया सरोवर में, उसने पानी पी लिया, पीकर ऐसे सिर उठाकर देखा तो क्या सुंदर कमल का फूल बंद पड़ा है। उसको ऐसा लगा कि जैसे किसी ने समोसा तैयार किया है, बढ़िया आलू के समोसे, यहां उसमें थोड़ा काजू भी डाला है, बादाम भी डाल दिया है, है क्या सुंदर समोसा बना। समोसा के आकार का होता है ना बंद कमल, होता है कि नहीं बोलो? और कमल देखने पर तुम्हारे मुख में पानी आती है क्या? अरे समोसा देखो तो मुख में पानी आएगा कि नहीं? है कोत मिर्ची की चटनी और गरम गरम समोसा, मुख में पानी आएगा कि नहीं बोलो? हाथी के मुख में पानी आ गया वो कमल का फूल देख के, क्या ये तो समोसा है भाई, खा लो। सूंड लंबा किया, पकड़ लिया और चबा लिया। भ्रमर क्या सोच रहा था कमल के अंदर बंद बंद? रात्रि गमिष्यति भविष्यति सुप्रभातम भास्वानुदेश्यति हसिष्यति पंकजश्री। रात चल जाएगा, सुबह होते ही पूर्व दिशा से सूर्य उदय होंगे, सूर्य उदित होते ही कमल अपने आप खिलेगा, कमल खिलते ही मैं उड़के चला जाऊंगा। अभी क्या चिंता है, रहो यही मस्ती से। लेकिन वो साथी उस कमल भ्रमर का रात्रि गया नहीं? उसके लिए अब सूर्य उदय होंगे, कमल खिलेगा अब? वो तो हाथी के मुख में गया, पेट में चला गया, हाथी ने जवाया उतार लिया है। ले जाइए रात्रि, अंबिका दत्त व्यास ने लिखा हुआ है श्लोक है। हाँ, स्वप्नवासम दत्तम संस्कृत नाटक का ये श्लोक है। रात्रि गमिष्यति भविष्यति सुप्रभातम भास्वानुदेश्यति हसिष्यति पंकजश्रीम इत्तम विचिन्त्य यदि कोश गते द्विरेपे आहंत हंत नलनिम गज उज्जहार। इतना सोच ही रहा था, सोचते सोचते गज आया, हाथी आया और नलिनी उस कमल के फूल को पकड़ लिया और खा के चबा के खत्म गया। अब न सुबह होगा, न सूर्य उदय होंगे, न कमल खिलेगा, न उसको उड़ना पड़ेगा। पता नहीं कहां पहुंच गया वो। उपमा दी गई है कि क्योंकि भ्रमर कमल के फूल में ज्यादा आसक्त होता है, तो हे शिवा एक फूल मेरे पास भी है। कौन है, कैसा फूल है? मनोराजीवे, मन रूपी कमल का फूल मेरे पास भी है। हे भ्रमराधिपा, भ्रमराधिपा माने भ्रमरों में श्रेष्ठ राजा भ्रमराधिप। और ये भ्रमराधिप कौन है? शिव जी है। कैसे है? कल हमने संकेत किया था, भ्रमरांबिका मूकांबिका भ्रमरांबिका श्रीशैल में, भ्रमरांबिका का देवी का नाम है भ्रमरांबिका। हाँ, उसके अधिप भ्रमराधिप, भ्रमरांबिका के जो स्वामी हैं, मदीय मनोराजिवे बिहारम बिहरताम, उस कमल में आप विचरण करें। श्री शैलवासी प्रभो, पहाड़ों में क्यों घूमते हो? पहाड़ों में क्यों घूमते हो? कांटे हैं, जंगल है, और मेरा एक सा मन रूपी कमल इतना सुंदर बना के रखा है, आप यहीं आकर विचरण करें। ये अन्योक्ति के माध्यम से, भ्रमर के माध्यम से भगवान शिव से प्रार्थना की है शंकराचार्य जी ने। कारुण्यामृत वर्षिणम घन विपत् ग्रीष्मच्छिदा कर्मठम विद्या सस्य पलो दया यसुमन संसेव्यमिच्छा कृतिम नृत्यत भक्त मयूर मद्रि निलयम चंचज्जटा मंडलम संभोवांछति नीलकंदर सदा त्वाम मे मनश्चातक। अब यहां शंकराचार्य जी अपने मन को चातक पक्षी के रूप में प्रस्तुत कर रहे हैं और भगवान शिव को बादल के रूप में प्रस्तुत कर रहे हैं, मेघ के रूप में प्रस्तुत कर रहे हैं। मेघ की जो विशेषताएं हैं वो सब शिव जी में है। मेघ कैसा है? कारुण्यामृतवर्षिणम्। मेघ भी वर्षा करती है ना, मेघ भी तो वर्षा करती है, जल की वर्षा। मेघ किसकी वर्षा करती है? जल की है? और भगवान शिव किसकी वर्षा करते हैं? अमृत, कारुण्यामृत वर्षिणम। तो मेघ के साथ शिव जी की उपमा दी गई है कि जैसा मेघ है। घन विपद ग्रीष्म छिदा कर्मठम, ये मेघ की विशेषता है। ये सब घर्म छिदा, प्रचंड गर्मी को नाश करने में कर्मठम। ये घर्मत, घर मैंने गर्मी, घर्म माने क्या? गर्म धर्म नहीं है, घर्म, घर्म माने गर्मी। घर्म छिदा, छिदा माने नाश करना, कर्मठम सक्षम है। अपने वृष्टि के द्वारा मेघ गर्मी को नष्ट करने में समर्थ है। घन विपत, घन का अर्थ होता है काली, विपत, विपत किसकी? घर्म की, घर्म की विपत्ति है ना। गर्मी से तड़प रहे हैं जीवात्मा, धरती में जीवात्मा गर्मी से तड़प रहे हैं। उसको छिदा, उस गर्मी के तड़पन, गर्मी से तड़पन हुए हुए विपत को, विपत्ति को नष्ट करने में समर्थ कौन है? बादल है। कर्मठम माने कुशल है, समर्थ है। इसी तरह जीवात्मा रूपी संसार में सभी जीव घर्मच्छिदा भगवान शिव रूपी बादल के कृपा से अपने जीवन के हर समस्या से, जीवात्माओं के यानी भक्तों के हर कष्ट को, हर मुसीबत को नष्ट करने में शिव ही समर्थ है। और जब बारिश होती है बादल से, तब विद्या सस्य फलोदयाय, धरती सस्य फला, सस्य माने धान, खेती, अनाज, हाँ, वनस्पति, पुष्णामी चौषधि सर्वा सोमो भूत्वा रसात्मकम्, पृथ्वी को सस्यशालिनी बनाने में समर्थ है कौन? मेघ। इसी तरह भगवान शिव प्रसन्न होंगे तो क्या होगा? विद्या रूपी सस्य फलोदय, विद्या का फल है, विद्या रूपी खेत का फल क्या होगा? मोक्ष। ब्रह्म विद्या रूपी फसल में मोक्ष रूपी फल भगवान शिव की कृपा होगी, तभी जाकर ये फल लगेगा। बादल की कृपा होगी तो वृष्टि होगी, तब धरती में उत्पन्न होने वाले सस्य में, सस्यशालिनी पृथ्वी सस्यशालिनी, प्रार्थना करते हो ना, देशोयम क्षोभ रहिता, ब्राह्मणा संतु निर्भया। तो आजकल विरोध करते हैं, ये मंत्र ठीक नहीं है प्रार्थना, क्यों? बोले ब्राह्मणा संतु निर्भया, ये ब्राह्मणों ने ही गाया हुआ मंत्र है। वैश्य क्षत्रिय शूद्र क्या करेंगे? मंत्र गलत है, ऐसा लोग कहने लगते हैं। विद्या सस्य फलोदयाय सुमनः संसेव्यमिच्छा कृतिम्। भगवान शिव क्या है? सुमन संसेव्य, बारिश के सबसे ज्यादा फूल के द्वारा ही उसका उपयोग करते हैं। सुमन संसेव्य, क्योंकि कहीं भी किसी भी वृक्षों में फूल लगता है तो सबसे ऊपर फूल ही रहते हैं। गुलाब को देख लो, सबसे ऊपर फूल रहते हैं, फूल के नीचे पत्ते, पत्ते के नीचे शाखा, उसके बाद जड़। तो भगवान माने मेघ की जो बारिश होगी तो सबसे पहले फूल में पड़ेगा ना, किसमें पड़ेगा? फूल। फूल का नाम क्या है? सुमना। हाँ, इसी तरह भगवान की जो कृपा होगी सुमना संसेव्य, अच्छे मन वाले ही भगवान शिव की सेवन करते हैं, यानी शिव कृपा का अनुभव कर पाते हैं। सुमना संसेव्य मिच्छा कृतिम, और भगवान शिव भक्तों के इच्छा के अनुसार अपने आकृति को धारण करते हैं। बादल क्या करता है? किसी के कहने से वो आकार को धारण करता है। हम लोग बचपन में देखते थे आकाश में बादल जब आते थे तब देखते थे, ये देखो 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 हाथी, वो हाथी। दूसरा कहता है नहीं नहीं देखो वो तो ऊंट है, ऊंट। तीसरा कहता है कि नहीं नहीं वो तो पेड़ है। चौथा कहता है नहीं नहीं तो पहाड़ है। ले जी क्या है वो? बादल अपनी इच्छा से आकार को बदलता रहता है, तो उड़ने के क्रम में कभी कोई रूप धारण करता है, कभी ऊंट का रूप धारण करता है, कभी हाथी का रूप धारण करता है, कभी पहाड़ का रूप धारण करता है, हैं? कभी किसी पक्षी का रूप धारण करता है। जैसे बादल अनेक रूप धारण करता है अपने आकाश में विचरण करने के क्रम में, इसी तरह भगवान शिव भी भक्तों के इच्छा के आधार पर अनेक रूप धारण करते हैं। इच्छा कृतिम नृत्यत भक्त मयूर मद्रि निलयम, बादल को जब देखता है तो मयूर नाचने लगता है। मयूर कब नाचता है? जब आकाश में काले काले बादल छाने लगते हैं, घनघोर मेघ, तब फिर मयूर नृत्य करने लगता है। नृत्यत भक्त मयूरम अद्रि निलयम, बादल भी कहां नाचता है? पहाड़ के चोटी में ज्यादा नाचता है, समझे कि नहीं? पहाड़ों के ऊंची ऊंची चोटियों में बादल हमेशा नाचता ही रहता है, घूमता ही रहता है। भगवान शिव कहां नाचते हैं? तो अद्रि निलयम, पहाड़ के चोटियों में ही नाचते हैं। जैसे मयूर नाचता है बादल को देखकर, वैसे भगवान शिव यानी नृत्यत भक्त मयूरम, भगवान शिव को दर्शन करके भक्त प्रसन्न होते हैं, भक्त रूपी मयूर प्रसन्न होते हैं। चंचज्जटा मंडलम, मानो भगवान शिव का शरीर ही पर्वत ही भगवान शिव का शरीर है, और काले काले बादल भगवान शिव की जटा है। जैसे भगवान शिव नाचने लगते हैं तो जटा कटाह संभ्रमम, देख लो जटा खोल देते हैं, तो शिवजी जब नाचने लगते हैं तो जटा बांध कर नहीं नाचते हैं। आप लोग तो गजरा लगा के नाचते हो, आपको नाचना हो तो केस को खोल के नाचना, बांध के नहीं। आप लोग नाचते हो तो कमर में बांध कपड़े को बांध करके, केस को बांध करके कहीं खुल ना जाए। और भगवान शिव तो कपड़ा भी खोल देते और जटा भी खोल देते, तब नाचते हैं तो क्या होता है? कटाह, आकाश रूपी कड़ाही के अंदर, रावण की शब्द है ये, जटा कटाह संभ्रमम, भगवान शिव की जटा आकाश रूपी कड़ाई के अंदर ऐसे घूमते हैं जैसे आप हलवा पकाते और पक जाने के बाद कड़ाई में नाचता है। कौन? हलवा नाचता है कि नहीं? सीरो नाचता है कि नहीं कड़ाई में? पकने से पहले नहीं नाचता, पक जाएगा तो नाचता रहेगा, घूमता रहेगा। भगवान शिव की जटा भी आकाश रूपी कड़ाई में घूमता है। जटा कटा संभ्रमम भ्रमन निलिंप निर्जरी, चंचत जटा मंडनम, भगवान शिव की जटा आकाश रूपी कटाई में कड़ाई में घूमते हैं। शंभु वंचति नील कंदर सदा, और इस सब की कामना, इस सब की याचना, जैसे चातक ऐसे बादलों की इच्छा करता है, चाहना करता है, इसी तरह हे शंभो मेरे मन रूपी चातक भी आपके इस स्वरूप के दर्शन करने के लिए चाह रहा है। नीलकंदर शंभो वांछति नीलकंदर, नीलकंठ मयूर नीलकंठ है तो शिवजी भी नीलकंठ है। सदा त्वाम में मनश्चातक आए, तुम्हें चाहता है, जैसे पानी मन चातक पानी को, आकाश के बादल के पानी के अलावा और कोई पानी से उसको संतुष्टि नहीं और पानी वह पीता ही नहीं है, इसलिए हे शिव मेरा जो मन रूपी चातक है आपके कृपा के अलावा, आपके अलावा और किसी को नहीं चाहता। बड़ा सुंदर कवि ने लिख दिया है, चातक स्वानुमाने न जलम प्रार्थयते अम्बुदात। चातक पक्षी तो अपने क्षमता के अनुसार, अपने अनुमान से चातक पक्षी बादल से पानी मांगता है, अपने लिए मांगता है, क्योंकि पानी की आवश्यकता तो चातक को है, उसको तो दो चार बूंद पानी हो तो पूरा हो जाएगा, तो उतना ही मांगता है वो। सो अनुमान है ना, अपनी अपेक्षा से चातक पक्षी पानी मांगता है। बैतरणा, अपर बैतरणा, लोअर बैतरणा, भर जावे इतना पानी दो, चातक पक्षी कहेगा? भातसा में भर जावे, बैतरणा भर जावे, चाहेगा चातक पक्षी? वो तो अपने मुख में दो चार बूंद गिर जाए वही पूरा हो गया, लेकिन भले ही चातक थोड़ी मांग रहा हो तर देने वाला बादल, देने वाला बादल चातक ने छोड़ा मांगा, इसीलिए थोड़ा ही देना है करके दो चार बूंद ही देकर शांत नहीं होता, अपने सारे जीवन का न्यूछावर कर देता है और बहुत वृष्टि करता है। सौदार्यतया सर्वम प्लावयत्यम्बुजाम महिम। चातक ने तो दो बूंद पानी मांगा था, लेकिन बादल ने इतना दिया कि सारे पृथ्वी को हरा भरा सस्य शालिनी बना दिया। ये बादल की जैसे विशेषता है वैसे ही भगवान शिव की भी है, मांगने वाला तो अपने लिए जितना चाहिए उतना ही मांगता है, लेकिन शिव जब देना चाहते हैं देते हैं तो छप्पड़ फार कर देते हैं, जब लेते हैं तो थप्पड़ मार कर लेते हैं। और आगे का प्रसंग कल। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शान्तिः शान्तिः शान्तिः। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्य कृतौ वन्दे भगवन्तो पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदाविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। ॐ